नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। गुलामों की नई फौजें सजेगी, हिल उठेगी रोम की ताकत और आतंक पिघलेगा, महल वर्साएगा फिर धूल में मिल जाएगा, गतिरोध टूटेगा, महाविद्रोह उठेगा, कम्युनियार्ड पेरिस के उठेंगे हर नगर में, अवरोरा जलपात से फिर तोप गरजेंगे, लैटिनी अमेरिका एशिया में अफ्रीका में क्रांतियों के रक्तवर्णी मेघ बरसेंगे, न उनकी जीत अंतिम है न अपनी हार अंतिम है, उठो ओ नौजवानों इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ गया। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ गया। हर शहर में एक शिकागो उठ खड़ा हो, सोच कर आगे बढ़े हम, मई दिवस बन जाए हर दिन साल का, यह सोच कर तैयारी करने लगे हम फिर। सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है, अंधेरा आज गहरा है, श्रमिक जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण, उठो ओ शिल्पियों नवयुद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा। क्रांतियां हुई और क्रांतियों में बहुत कम समय में वो परिवर्तन आ जाता है जो लंबे समय से नहीं आया। क्रांतियां होती है, रक्तवर्णी मेघ गरजेंगे। बाहर जितनी भी क्रांतियां हुई वो रक्तपात की क्रांतियां थी। बाहर जितनी भी क्रांतियां हुई उसमें हलचल थी, विद्रोह था और सत्ता पलट दी गई। नई सत्ता आई, नया शासन आया। परंतु जो आध्यात्मिक क्रांति है वो भीतर है, उसमें भी हलचल है, उसमें भी विद्रोह है, उसमें भी सत्ता पलट दी जाती है। परंतु किसकी सत्ता? असत्य की सत्ता। भीतर इस क्रांति अर्थात असत्य को खत्म कर देना और सत्य के राज्य की स्थापना करना। इस क्रांति में जैसे वो क्रांतियां होती है उस तरह से तोहफे नहीं है, बंदूकें नहीं है, गुलामियों की नई फौजें सजेगी, हिल उठेगी रोम की ताकत और आतंक पिघलेगा। वहां आतंक के खिलाफ लड़ाई है, महल वर्षाएगा फिर धूल में मिल जाएगा, गतिरोध टूटेगा, महाविद्रोह उठेगा, कम्युनाइड पेरिस के उठेंगे हर नगर में, अब्रोरा जलपात से फिर तोप गरजेंगे, लतिनी अमेरिका एशिया में अफ्रीका में क्रांतियों के रक्तवर्णी मेघ गरजेंगे। न उनकी जीत अंतिम है न अपनी हार अंतिम, उठो नौजवानों इनकलाबों के नए संस्करण गढ़ने का समय फिर आ गया। वहां की क्रांतियों में भयंकर हलचल है, हवाएं दूषित हो जाती है, लड़ाइयां जब होती है तो, और फिर एक नया राज्य स्थापित होता है। और जैसे कहा, कम समय में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। और भीतरी जो क्रांति है उसमें भी कम समय में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। बुद्ध 6 साल से तपस्या कर रहे थे, 6 साल से साधना कर रहे थे, 6 साल से सत्य को ढूंढ रहे थे, 6 साल से शास्त्र का अध्ययन, सिद्धियों को प्राप्त किया, हर प्रकार की साधना की, परंतु सब कुछ निष्फल। और फिर उस रात, बस उस एक रात में ही सत्य को पाया। ये भी एक क्रांति ही थी, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, स्पिरिचुअल म्यूटिनी, विप्लव, विद्रोह, रिवॉल्ट। तो कम समय में परिवर्तन आ जाना, इसे कहते हैं क्रांति। और ये तब आएगी जब दिल को कोई बात छू जाए, ये तब आएगी जब तीर बहुत गहरा लग जाए। इसके लिए हम वो सभी बातों की चर्चा कर रहे हैं कि शायद किसी एक बात से तीर लग जाए और वो तीर क्रांति लाए। बुद्ध से किसी ने पूछा था, सम्यक संबुद्ध बुद्ध, आफ्टर एनलाइटनमेंट जो तुमने पाया उसमें तुमने क्या पाया? बुद्ध ने कहा, और पूछा कि तुमने क्या खोया और क्या पाया? बुद्ध ने कहा, मैंने बहुत कुछ खोया पर पाया कुछ भी नहीं। खोया बहुत, जो असत्य था उसको खोया, जो भ्रांतियां थी उसको खोई, जो अनित्य था उसको खोया, और पाया कुछ भी नहीं, क्योंकि जो पाया वो पहले ही था, वो कहीं से लाया नहीं, वो तो था ही, नित्य तो था ही, अनित्य को खोया। खोया बहुत पर पाया कुछ नहीं, क्योंकि जिसको पाया वो वहीं पर था। क्रांति अर्थात वो सब कुछ खो देना जो सत्य नहीं है, और क्रांति अर्थात वो पा लेना जो पहले ही है और जो सत्य है, जो नित्य है, जो चेतन है। और जब तक वो पा नहीं लेते, रुकना नहीं। ये कथा कब तक चलती रहेगी? आज सुबह की साकार मुरली प्रश्न, ये कथा कब तक चलती रहेगी? अमरनाथ सुना रहा है पार्वतियों को, कब तक चलेगी ये कथा? जब तक तुम संपन्न नहीं बन जाओ, फरिश्ते नहीं बन जाते, तब तक क्रांति होती ही रहे, तब तक रुकना नहीं है, जब तक एंजल न बन जाओ। यह है क्रांति। स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, हलचल की अवस्था आई। रिवॉल्यूशन हलचल की अवस्था होती है, वहां पर बाह्य हलचल है, यहां पर एक डिवाइन हलचल, डिवाइन डिस्कंटेंट, एक दैवीय संतोष निरंतर घेरे हुए रहे। किस बात का संतोष? कि पाया नहीं है, पहुंचे नहीं है, समझा नहीं है, देखा नहीं है। जब तक देख ना ले, तक जब समझ ना ले, जब तक पा ना लू, तब तक रुकेंगे नहीं। निरंतर सजग, सतत जागृत, देखते रहना। आज का है बाप तुमको इन खिड़कियों द्वारा देखते, उसको देखना है। हर दिन क्रांति का दिन हो, हर दिन परिवर्तन का दिन हो। हम वो ना रहे जो कल थे, नए सत्य, नए अनुभव, नई प्रतीति, नए रियलाइजेशन, नए चेंज होता ही रहे। हर दिन अनुभवों का एक पुंज है, हर दिन अनुभवों की एक किताब है। एक दिन में कितने अध्याय होते हैं अनुभव के? एवरी डे इज अ चैप्टर ऑफ, इज अ बुक ऑफ एक्सपीरियंसेस। एवरी डे इज अ बुक कंटेनिंग चैप्टर ऑफ एक्सपीरियंसेस। एक एक दिन एक किताब है, और इस किताब में अध्याय होते हैं। कौन से? अनुभव के। एक एक चैप्टर से एक एक चीज सीखनी है। हर दिन कई सारी कहानियां होती है, एक एक कहानी से एक एक चीज सीखनी है। हो सकता है कोई ज्ञान में इतना होशियार नहीं है। दो व्यक्ति है, एक वो जो ज्ञान में बहुत होशियार है पर दुखी रहता है, एक वो जो बिल्कुल भी होशियार नहीं है पर हमेशा खुश रहता है। इसे क्या कहें? पॉइंट्स पूछो तो सारी पॉइंट्स याद है, एक वो पर फिर भी दुखी है, एक वो जिसे कुछ याद नहीं है पर स्वभाव क्या है? खुश रहने का, नेचुरल नेचर। क्योंकि जो ज्यादा जानते हैं वो दुखी क्यों है? खुशी खुश व्यक्ति को देखकर कि कुछ ना जानते हुए भी खुश है, और हम सब कुछ जानते हुए भी ना खुश है। ज्ञान अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो ज्ञान नहीं, सिंपल। एक है जिसको ना बोलना आता है, ना कहीं दिखाई देता है या देती है, परंतु खुश है। और दूसरे जो सब जगह छाए है पर फिर भी दुखी है। तो पिछले दो दिन से हम कुछ बातें देख रहे हैं दादी के विषय में। पहले दिन 17 बातें देखी, दूसरे दिन कल 20, आज कुछ बातें देखी। सबसे पहला, दादी हमेशा कहती थी कि जो भी यज्ञ में धन आता, पैसे आते, वो हर व्यक्ति अपनी भावना से देता, और वो जो जिस भावना से दे, यदि हम उसका वैसा प्रयोग न करें तो उसकी भावना को ठेस पहुंचेगी। जैसे अगर कोई भोग के लिए पैसा देता है तो वो पैसा भोग में ही जाए, अगर कोई हॉस्पिटल के लिए पैसा देता है तो वो पैसा हॉस्पिटल में ही जाए, फिर और दूसरी जगह कहीं नहीं लगे, क्योंकि उस आत्मा ने वो पैसा उस चीज के लिए दिया है। सेवा केंद्र पर धन दिया किस लिए? मधुबन के लिए, तो वो मधुबन ही जाए। सेवा केंद्र पर पैसा दिया है सेवा केंद्र के लिए, तो सेवा केंद्र में ही लगे, क्योंकि इसके साथ देने वाले की भावना जुड़ी होती है, और यदि हमने वैसा न किया तो उसकी भावनाएं आहत हो। ये दादी का नियम था। तो ये हैबिट नंबर 1 आज की। अगला, दादी को एक बहुत बड़ा नशा था। कौन सा? कुछ तो बनाने का, कि वो मैंने बनाया। बहुत ही बड़ा नशा था। कौन सा नशा? कौन सा नशा? कि वो मैंने बनाया, और मैं गारंटी करती हूं कि मैंने ही बनाया है। कौन सा नशा? जैसे ब्रह्मा ने सोमनाथ बनाया, वैसे मैंने दिलवाड़ा बनाया। दादी को कौन सा नशा था? ये जो दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है वो किसने बनाया है? किसी जन्म में मेरे द्वारा ही बना गया है, और ये नशा ही नहीं, मैं इसकी गारंटी करती हूं। जैसे ब्रह्मा ने सोमनाथ का मंदिर बनाया, वैसे मैंने दिलवाड़ा बनाया, क्योंकि उसका दिल मैंने जीता है इसलिए। और कोई बना ही नहीं, तो देखो कैसे नशा है, गारंटी वाला नशा, ऊपर ऊपर वाला नहीं। जो आत्माएं नशे में रहती है उनको एक फायदा होता है, कौन सा? जो नीचे हलचल चालू होती है उनका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे हलचल ही हलचल है। और जो नशे में है उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? पूरा पी के है, नशे में धुत सड़क पर चल रहा है, उसको क्या पता है कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन है, उसको कोई मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ लेना देना नहीं होता। वो है जिस्मानी नशा, ये है रूहानी नशा। मैंने भगवान का दिल जीता, इसलिए दिलवाड़ा मैंने बनाया है, और ये मेरी गारंटी है। फिर दादी को और एक नशा था। दादी कहती थी कि मुझ में पांच आत्माएं हैं, पांच लोगों का एकत्र निवास मुझ में होते रहता है। कौन कौन? सबसे पहला दादी चंद्रमणि शेरनी मुझ में है, दूसरा मम्मा जगत माता मुझ में है, तीसरा गोपिका दीदी जो गोपी है उसकी मुझ में, चौथा भाऊ विश्व किशोर भाऊ। जितना ओबीडियंस विश्व किशोर भाऊ में था उसमें किसी में नहीं था। जहां बाबा ने कह दिया बस जाओ हो गए, एब्सोल्यूट ओबीडियंस। और पांचवा द एंजल ऑफ लाइट, द ज्वेल ऑफ लाइट, प्रकाश मणि। दादी कहती थी ये जो पांच है इन पांचों का अस्तित्व मुझ में है, या फील करती हूं कि मैं ये पांचों मुझ में चलते हैं। एक तरफ शेरनी, दूसरी तरफ गोपी, तीसरी तरफ विश्व की माँ हूं जगदम्बा, मैं ही हूं, और एक तरफ उसका बच्चा हूं आज्ञाकारी, और पांचवा कौन हूं? प्रकाश मणि। कौन सा मणि हूं? प्रकाश का, सूर्य की, सूर्य का प्रकाश और साइंस का प्रकाश और साइलेंस की सकाश। साइंस का क्या है? प्रकाश। और साइलेंस का क्या है? सकाश। तो वो साइलेंस मुझ में है। तो दादी को ये भी नशा था कि मुझ में ये पांच पांच एक साथ है। अगला, दादी को बाबा के चार पोस्चर, चार पोजेस, चार मुद्राएं निरंतर आंखों के सामने रहते थे। बाबा की चार मुद्राएं, फोर पोजेस। कौन कौन से पोजेस? सबसे पहला पोज तपस्या का, जो बैठा हुआ है। दादी कहती है कि मैं हमेशा बाबा को उस रूप में देखती रहती हूँ कि बाबा कैसा है, तपस्या रूप में बैठा हुआ है। ये पहला। दूसरा लेटर राइटिंग वाला, तकिया रख के लेटर लिख रहे वो वाला पोज। तीसरा विष्णु वाला, तीसरा विष्णु वाला अनंतासन में, जैसे भक्ति में दिखाए थे ना विष्णु कैसा है, क्षीरसागर में शेषनाग के ऊपर अनंतासन में लेटा हुआ है, इसको अनंतासन कहते हैं योगासन में। तो वैसे बाबा का भी एक चित्र है ना लेटा हुआ अनंतासन में। और चौथा पहाड़ों पर पत्थर से टिका हुआ मगन अवस्था में एक चित्र है, देखा होगा सबने। तो दादी कहती है कि ये चारों मुद्राएं मेरी आंखों के सामने घूमते रहते, उस तन से इन खिड़कियों से कौन देख रहा है सच सुबह की साकार मुरली, इन खिड़कियों से भगवान झांक रहा है, इन झरोकियों से वो देख रहा है। नेक्स्ट, दादी कहती थी मैं तीन एस को निरंतर सफल करती हूँ, थ्री एस, कौन से? श्वास, समय, संकल्प। श्वास, समय और संकल्प। दादी के 3P भी है, कौन से? 3 P's। हर कर्म में ये 3 P's हो तो सफलता मिलेगी। पावरफुल, पॉजिटिव, पावरफुल, पॉजिटिव, प्यूरिटी। पावरफुल, पॉजिटिव और प्यूरिटी। पीस पार्क का बाबा का कमरा है ना, वहां लिखा है। तो 3 चीजों को सफल करना है, श्वास, समय और तीसरा संकल्प। तो ये हो गया कितवा पॉइंट, छठवा। उसके बाद नेक्स्ट, दादी का एक नियम और भी था जो हमने कल भी देखा कि बचपन से ही बीमारियों ने छोड़ा नहीं, कुछ ना कुछ होते रहा, पर एक नियम निरंतर रहा कि चाहे कितने भी बीमार हो परंतु अमृत वेला बिस्तर पर नहीं। क्यों? क्योंकि जो बिस्तर होता है उसमें नींद के स्लीपी वाइब्रेशंस होते, नींद के, और हो सके तो मे भी कई जगह संभव नहीं, वो कमरा जो है उसमें भी नींद के वाइब्रेशंस होते। इसलिए अमृत वेला बिस्तर और कमरा दोनों का त्याग कर, बिस्तर त्याग, कमरा त्याग, क्योंकि इस कमरे में कौन से वाइब्रेशंस है? नींद के, नींद स्लीप वाइब्स। अगर कमरा है ही नहीं दूसरा, बालकनी, टेरेस या बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो कम से कम चेयर तो है या नीचे तो है, परंतु अमृत वेला बिस्तर पर नहीं। ये दादी का नियम था। नेक्स्ट, कई बार बीमारियों की वजह से पूरी पूरी रात दादी को नींद नहीं आती थी, तो दादी क्या करती थी जब नींद नहीं आती थी? तो वो तो है, और बाबा का वो, हाँ बाबा आओ और मुझे नींद दिला दो, क्योंकि जब नींद नहीं आती है तो वो समय आत्मा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करती है, बेचैनी की अवस्था होती और हाथ में मोबाइल, तो क्या करना है? अगर नींद ना आए तो बाबा का आह्वान करो, आ जाओ और मुझे नींद दिला दो। क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसे जीवन में प्रसंग आते हैं कि बिना किसी कारण के नींद ही नहीं आती, जबकि दिन में भी नहीं सोए, थोड़ा भी नहीं सोए, उसके पहली रात भी नींद नहीं थी ठीक से, और फिर भी नींद नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करना है? बाबा को पुकारना, आह्वान करना, बुलाना, तो अपने आप नींद आ जाएगी, धीरे धीरे, जरूरी नहीं तुरंत, आ जाएगी। उसके बाद में एक स्वभाव था दादी में, एक आदत थी, कौन सी? नॉन अटैचमेंट की। अंग्रेजी में जब शब्द प्रयोग किया जाता है अटैचमेंट के विरुद्ध, तो डिटैचमेंट कम प्रयोग होता है, क्या ज्यादा प्रयोग होता है? नॉन अटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं। फोकस किस पर है? अटैचमेंट नहीं पर। कई बार ऐसा हुआ दादी के साथ कि कई भाई बहने अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए, पर दादी ने जब देखा कि यहाँ मेरे से कोई कंसर्न नहीं है इन चीजों का, तो दादी उनको दूसरों के पास, जिससे रिलेटेड वो बात है, उनके पास भेज देती थी, खुद डिटैच्ड, अननेसेसरी कहीं पर इन्वॉल्व नहीं होती थी। स्तुति मिलती थी तो साक्षी हो जाती, सब कुछ ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कराती थी। सभी योगियों के सामने एक बहुत बड़ा खतरा ये होता है, कौन सा? रूहानी, क्योंकि बीकेज में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बीकेज में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन। क्यों? कुमारों में भी और कुमारियों में, ब्रह्मा कुमार में भी, ब्रह्मा कुमारियों में भी। क्यों? क्योंकि प्यूरिटी एक, दूसरा सारे काम साफ सफाई, क्लीनलीनेस, और सारे काम एक्यूरेट, तो बाहर वालों के लिए तुरंत आकर्षित होते हैं ये सब देखकर, क्योंकि संसार विकारी है। तो ये सब चीजें जो होती है इनकी बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, बाहर वाले छोड़ो भीतर वाले भी। तो योगियों के सामने एक खतरा हमेशा रहता है, कौन सा? आकर्षण। इसके लिए जो भी स्टेज पर है, वैसे तो निरंतर हम स्टेज पर है, परंतु हीलिंग टेक्निक में एक टेक्निक सिखाई जाती है जिसमें हमें अपना ऑरा क्लीन करना होता है। क्योंकि जैसे ही आप स्टेज पर हैं, हजारों आंखें देख रही है, तो उनके वाइब्रेशंस टच हो रहे हैं। इसके लिए जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो, उसके लिए एक शब्द है, वो याद नहीं आ रहा है हमें, वो पूरा शरीर से जो वाइब्रेशंस आए हैं उसको निकालते हैं। जैसे कि एक इमेजिनरी आग का गोला है या एक चीज है जिसमें आग जल रही है, तो जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि इतने लोगों के संपर्क में आए, हजारों लोग थे, सामने ना भी होंगे तो टीवी पर देख रहे होंगे, और उन सब के संकल्प चल रहे हैं, तो जिसको वो कहते हैं कि ऑरा क्लीन करना, हाथ से निकालते उसमें डालते, इधर निकाला उसमें डाला, इधर से निकाला फिर उधर डाला, फिर यहाँ से निकाला उधर डाला, फिर पैरों से निकाला उसमें डाला, ये सारा निगेटिव एनर्जी जो भी आई है उसको उसमें डाल देना। और टीचर्स जो होते हैं, स्पेशली हीलिंग टीचर्स, एक एक हीलिंग सेशन करने के बाद उनको ये कंपल्सरी करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप हीलिंग करते हो किसी आत्मा की, स्पिरिचुअल हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, तब क्या होता है, जो बीमार व्यक्ति है उसके प्रकंपन एक तो होता है, हम उसको हील कर रहे हैं, परंतु उसकी बीमारी हमको ना आ जाए सूक्ष्म में। तो इसके लिए अपना प्रोटेक्शन भी हमको करना है, और एक चीज, एक ऑरा क्रिएट करना है अपने इर्द गिर्द, इनविजिबल वॉल, एक पावरफुल ऑरा। तो दादी कभी भी किसी को अपने में फंसने नहीं देती थी। अगला, अभी इतिहास की तरफ चलते हैं जहां हमने छोड़ा था। 1950s, कल हमने देखा था कि यज्ञ कहाँ आ गया, माउंट। तो दादी बीमार रहती थी, कुछ ना कुछ होते रहता था, कभी अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत। तो एक भाई थे जिनको गॉडफादर ऐसे कहते, तो दादी के ऐसे एक गॉडफादर थे। गॉडफादर अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दादी को अपने गोद लिया था, जिस, उनका नाम था जीवात्राम दादा। जीवात्राम दादा जब सिंध, हैदराबाद और कराची में थे, तो दादी को उन्होंने जैसे गोद लिया था, अपनी गोद की बेटी मानते थे। और वो एक दिन दादी से मिलने यहाँ है माउंट में, कितने साल के बाद, 15 साल के बाद है। तब तक कोई संपर्क नहीं रहा, क्योंकि दादी तो आ गई ओम मंडली में और वो पहले थे, तो यहाँ पर मिलने आए। जब उनको पता चला कि यज्ञ यहाँ आ गया है, तो दादी उनसे मिली, और उसके पहले दादी ने बाबा से एक बात कही थी कि बाबा मैं बीमार रहती हूँ, मेरे से कोई सेवा नहीं होती है, क्या करूँ। और उसी समय ये जीवात्रम दादा वहां आ गए। तो दादी ने फिर सोचा कुछ तो करूँ सेवा, तो उनको ज्ञान देना चालू किया, उनको ज्ञान समझाना चालू किया दादी ने, और वो बहुत खुश भी हुआ ज्ञान सुनकर। और फिर दूसरा दिन जब पानी चल रही थी और दादी बैठी थी, और दादी ने एकदम बाबा के मस्तक पर जैसे लाइट देखा और लाइट का गोला देखा, और दादी एकदम नाचने लगी। वो साक्षात्कार तो नहीं था, परंतु साक्षात्कार जैसा ही था, दादी जैसे बाबा के हाथ पकड़कर नाचने लगी, और वो जो जीवात्राम दादा थे दादी के बाप के उम्र के, वो देखने लगे और फिर कहने लगे अहो प्रभु अहो, जैसे उसको भी जैसे अनुभव होने लगा। और जब वो जाने लगे तो उसने फिर दादी को 13 रुपए दिए सेवा के लिए, और यहां से फिर वो नीचे चले गए। और नीचे जब पहुंचे आबू रोड, फिर से बाबा को फोन किया और कहा कि विश्व किशोर भाव को तुरंत भेजो, अर्जेंट काम है। इनको लगा पता नहीं क्या हो गया, तबीयत खराब हुई या कुछ हो गई, और नीचे गए। और नीचे जाने के बाद वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने सारे शेयर बेच दिए, और जो भी पैसा आया नीचे जाके कुछ लिखा पढ़ी की, और सब कुछ भाव को दे दिया यज्ञ के लिए। और वो समय कौन सा चल रहा था? बेगरी पार्ट, जब यहाँ कुछ नहीं था। तो बाबा ने तब एक वाक्य कहा, और वो कौन सा वाक्य था? भक्ति में गायन है, जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तो भगवान आते। यहाँ पर भगवान पर भीड़ पड़ी है तो भक्त मदद करने आ गया है। तो ये भी किसका परिणाम था? दादी ने जो सेवा की। हम कुछ कर नहीं सकते धन की सेवा, पर हम उनकी सेवा तो कर ही सकते। तो जो जीवात्राम दादा थे, उन्होंने अपने सारे शेयर के पैसे दे दिए, वो ऊपर आ गया। तो बाबा ने फिर ये वाक्य कहा था उस समय। तो ये भी एक सेवा है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत गरीब है, पैसे हमारे पास नहीं है, पर हम आत्माओं की सेवा तो जरूर कर सकते हैं, उसमें भी हमारा भाग्य बनता है। तो दादी ने ये सेवा की उस आत्मा की। दादी अपना एक और अनुभव सुनाती है कि जब ट्रेनिंग सेंटर बंद रहा था टीचर्स का, तो बाबा दादी को एक बार लेके गए वहां पर और कहने लगे, ये ट्रेनिंग सेंटर है और एक दिन तुम यहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग दोगी, वो टीचर्स जो फिर सारे विश्व का कल्याण करेंगे, दुनिया भर से टीचर्स यहाँ आएगी और तुम उनको ट्रेनिंग दोगी, उनकी तुम क्लास कराओगी। दादी कहने लगी कि क्लास, ये तो मुझे कुछ भी नहीं आता है और यहाँ इतने बड़े बड़े सब है, उनको मैं नहीं करने करा सकती। बाबा ने दादी को जैसे वरदान दे दिया। दादी ने कहा, ये सब बड़े बड़े, ये मेरा क्या सुनेंगे? पर बाबा ने कहा कि ऐसा समय आएगा। और फिर बाबा दादी को हिस्ट्री हॉल में लेके गए और ये सिखाया, क्लास तुम कैसे कराओगी, क्या कैसे कराना चाहिए। तो दादी कहती है कि बाबा ने ही मुझे ये सिखाया कि किस तरह बोलना है। सेवाएं बहुत सारी है, परंतु उसमें से एक सेवा ये भी है, क्लास का नहीं, ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी सेवा है, परंतु ये भी एक सेवा है। परंतु इस सेवा के लिए स्थिति बनानी पड़ती, स्थिति, चिंतन, स्वयं को बहुत सारे व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखना, स्वयं को ऊपर रखना होता है, क्योंकि नीचे गड़बड़ी गड़बड़ी, और जिनका कल्याण करना है उसके ऊपर रहना होता है। जो टीचर होता है, चाहे 40 साल से पढ़ा रहा है, फिर भी जब उसको केमिस्ट्री की क्लास करानी है तो क्या सुना होगा कि कल मेरी केमिस्ट्री की क्लास करानी है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कौन सा टीचर कहता है ऐसा? प्रोफेसर्स भी तैयारी करते, उनको कल फिजिक्स पर बोलना है, ऐसे ही सीधे जाके बोलना नहीं चालू करते, वो प्रिपेयर करते। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर्स है, वो भी प्रिपरेशन करते। तो ये प्रिपरेशन उस क्लास से अधिक महत्वपूर्ण है। और वास्तव में क्लास का महत्व नहीं है, क्लास का फायदा तो दूसरों को हो रहा है, इनको फायदा क्या हो रहा है? उनकी जो की हुई प्रिपरेशन है उसका। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास है और फिर टाइम पर कैंसिल हो गई या पोस्टपोन हो गई या कुछ हो गया, तो ये जो चिंतन किया हुआ है ये आगे जाके काम आता है, वेस्ट नहीं होता है। देखो, हमने इतनी तैयारी की और टाइम पे हुआ ही नहीं। जैसे बच्चे होते हैं ना, डांस की तैयारी करते हैं और डांस होता ही नहीं, दुखी हो जाते हैं फिर। पर ये ज्ञान है, बीज अविनाशी है, तुमने जो चिंतन किया है वह वेस्ट वो नहीं जाएगा। इसके लिए रोज एक टॉपिक मुरली से निकालना है और उस पर चिंतन करना है, किसी और के लिए नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के सामने बोलना है। इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट करो अपने सामने, एक काल्पनिक, और प्रैक्टिस करो। कोई भी एक टॉपिक ले लो, कहीं से भी, पूरी मुरली से, जैसे आज की मुरली से तपस्या। तपस्या अर्थात एकाग्रता, तपस्या अर्थात एक रस, तपस्या अर्थात इकोनॉमी, तपस्या अर्थात एक के एक नॉमी, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय। अभी अभी जो मुरली जी थी उसी से निकाला हुआ वरदान, लास्ट संडे के, लास्ट संडे का। तो टॉपिक ले लो तपस्या। अब अगर हमें तपस्या पर बोलना है तो ये थोड़ा मन में हलचल पैदा करेगा कि हम भोगी विलासी और बोल रहे तपस्या पर। मन मना करेगा, मन डूबने नहीं देगा भोग विलास में, हमें करना ही पड़ेगा तपस्या। इज्जत का सवाल है, बाहर का नहीं तो अंदर ही, मन खाएगा नहीं तो। नेक्स्ट स्टोरी। एक बार दादी ने बाबा से कहा, बाबा मुझे सेवा में जाना है, मुझे सेवा जाना है। तो बाबा ने कहा ठीक है जाओ। तो बाबा ने दादी को बुलाया, दादी प्रकाशमणि उस समय कैशियर रहती थी, और फिर दादी से कहा इनको पैसे दो, 25 रुपए दिए, और दादी ने अपने दो जोड़ी कपड़े लिए और निकल पड़ी सेवा के लिए। कहाँ पर? मुंबई। और मुंबई में दादी के लौकिक रिश्तेदार, माता पिता भाई ये सब रहते थे। तो दादी निकल पड़ी सेवा के लिए, 25 रुपए लेकर, 2 जोड़ी कपड़ा लेकर मुंबई स्टेशन पर पहुंची और वहां से सेवा केंद्र गई पैदल। ये है स्टोरी। हम सेवा करते हैं पर हमें क्या चाहिए? सारी फैसिलिटीज, सारी सुख सुविधाएं। कार है पर हम नहीं जाएंगे, एसी नहीं है उसमें, हम और जाए सिंपल वाली कार में। देखो दादी स्टेशन पर पहुंची और पैसे तो थे परंतु ट्रैवलिंग में खर्च नहीं किए, वहां से सेंटर तक, मुंबई सेंट्रल से पैदल। नेक्स्ट स्टोरी। दादी का भाई आया, लौकिक भाई, लेने और कहने लगा चलो घर, माता जी इंतजार कर रही है, इतने दिनों से देखा नहीं है। दादी ने कहा जीऊंगी मरूंगी यज्ञ में। लौकिक घर नहीं गई, और गई भी तो एक हफ्ते बाद, क्योंकि माता जी बार बार याद कर रही है इसलिए। तो भाई लेने आया पर दादी ने क्या कहा, मैं नहीं जाऊंगी। बाद में गई दादी अपनी लौकिक माँ से मिलने एक हफ्ते बाद, क्योंकि लौकिक में जाते ही क्या चालू हो जाता है, उनको देखते ही मोह जागृत हो जाता, पुरानी यादें ताजा हो जाती है। मम्मी को देखा नहीं है, मम्मी के हाथ का खाना है, मम्मी की याद आ रही है। बाबा ने दादी की माँ के नाम एक लेटर दिया था मधुबन से, दादी के लौकिक माँ के नाम, और उसमें कहा था ये जो जनक बेटा है, बाबा दादी को बेटी नहीं कहते थे, बेटा कहते थे जनक, और जानकी नहीं कहते थे, जनक कहते, ये मेरा वो रत्न है जो अष्ट रत्नों में आने वाला है। क्या कहा? ये वो है जो अष्ट रत्नों में, और वो लेटर सुनकर बस इतना दादी को याद था, उसमें ये लिखा था, बाकी क्या लिखा था पता नहीं, दादी ने देखा नहीं पर ये बात लिखी थी। और फिर दादी कहती है कि मेरी माँ लौकिक माँ बहुत खुश हो गई ये लेटर सुन पढ़कर। तो ये एक स्टोरी। तो कौन सी आदत? लौकिक से अटैचमेंट। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, जितनी ज्यादा अटैचमेंट उतनी आत्मा में पावर कम होने लगती है, क्योंकि अटैचमेंट जिससे है वो व्यक्ति हमारी पावर को खींचता है, उसके संकल्प, उसकी खुशी, उसको क्या चाहिए, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उसकी पसंद का साइकिल सर्कल चालू हो जाता है चिंतन। नेक्स्ट। दादी जब तक लौकिक उधर थी मुंबई में, दादी ने क्या किया, हर दिन सत्संग, हर दिन कभी समुद्र किनारे में महालक्ष्मी मंदिर, कभी लाइब्रेरी, कभी किंग सर्कल, कभी दूसरे दूसरे टेम्पल्स, हर दिन जा के सेवा की, एक दिन भी नहीं रुकी, चित्र लेके गई और लोगों को समझाना चालू, और आते समय फिर पैदल आती थी। अब यहाँ एक दूसरी बात, कई बार लोग दादी को लिफ्ट ऑफर करते थे पर दादी कहती है कि मैंने एक बार भी किसी से लिफ्ट नहीं ली, किसी से एक बार भी लिफ्ट नहीं ली। कई बार ब्रह्मा कुमारी बहनें होती है सेवा केंद्रों पर, गीता पाठशालाओं पर जाती है, और सेंटर के कुछ भाई होते हैं जो अभी अभी ज्ञान में आए हैं, और उनको पता नहीं, सारे नियम पता नहीं होते, थोड़े थोड़े नियम पता होते हैं, पर बहुत भावना होती है बहनों के प्रति, बहुत भावना होती है, अभी अभी कोर्स हुआ है और बहुत भावना वाले होते हैं, गृहस्थी होते हैं, पर अभी भी ज्ञान में आ गए, और बहन जी को अकेले जाते हुए देखते हैं, कहते हैं कि आओ हम तुमको छोड़ देते हैं स्कूटर पर, बहुत शुद्ध भावना से, बहुत पवित्र भावना से। तो वहां दादी की यह बात याद रखनी है, कौन सी? लिफ्ट नहीं लेनी, उनको बहुत प्यार से समझाना है कि हमारे यज्ञ का ये नियम है, वो हर्ट भी ना हो, क्योंकि ये वो भाई लोग हैं जो बहुत अनन्य है, अभी अभी आए हैं, कुछ समय हो गया है, और ऐसा करती भी है बहन, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये पॉइंट आई है इसलिए बता रहे हैं कि दादी कहती है कि मैंने कभी भी किसी से लिफ्ट नहीं ली। नेक्स्ट, जब मुंबई में थी और दादी को कहती है जब मुझे भूख लगती थी तो मैं क्या करती थी, दादी कहती थी मेरे पास एक आना रहता था और बाबा ने परमिशन दी थी, मेरे पास पैसे रहते थे और बाबा ने ये परमिशन दी थी कि एक रुपए तुम खर्च कर सकती हो अपने लिए, तो दादी कहती थी मैंने एक रुपया खर्च नहीं किया कभी भी, हमेशा कितना खर्च किया, एक आना जिसमें चार केले ले लेती थी, फ्रूटेरियन डाइट, केले खा लो तो भूख खत्म, सस्ते है पेट भर जाता है, नमक वाले नहीं है, नमक खाओ तो भूख लगती है, मसाला खाओ तो भूख लगती है, तला हुआ खाओ तो भूख लगती है, पका हुआ खाओ तो भूख लगती है, विथ ईटिंग कम्स एपिटाइट, वैसे भूख नहीं लगती है पर जैसे खा लो फिर भूख लगना चालू होती है, कोई कहो कि 12 बजे तक तुमको कुछ नहीं खाना है आराम से 12 बज जाते बिना कोई संकल्प के, पर यदि कुछ खा लिया, पानी भी पी लिया या कुछ भी ले लिया, एक बार ले लिया फिर नेक्स्ट भूख लगना तुरंत चालू, ये नियम है, विथ ईटिंग कम्स एपिटाइट, अगर खाया ही नहीं तो फिर भूख नहीं लगती और खा लिया फिर खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, ये सिंपल सा नियम है। तो दादी कहती है कि मैं एक आने के क्या करती थी, चार केले काफी है, चार केले प्यार से खाने का उसको बैठ के बाबा की याद में धीरे धीरे। नेक्स्ट, पर बाबा दादी कहती है जब मैं बैंगलोर में गई फिर मैं 8 आने यूज करती थी, तो 4 आने में नारियल पानी लेती थी और 4 आने थे उसमें गाजर और टमाटर लेती थी, और अगर एक्स्ट्रा पैसे है और बच गए तो फिर मधुबन की भंडारी में भेज देती थी, इसमें भी बचे हुए हैं वो भी मधुबन की भंडारी में, सारा जीवन किससे भरा है, त्याग से। नेक्स्ट, दादी कहती है मैं पूना में थी और फिर पूना से मुंबई में मुंबई वाया मुंबई और फिर आबू में आई, और बाबा को दादी ने एक बार कहा बाबा मुझे आपका धर्मराज का रूप नहीं देखना है, आगे धर्मराज मुझे आंख ना दिखाए, और दादी कहती है एक बार मैंने जब ये संकल्प आया तो 40 दिन तक मधुबन में तपस्या की एक ही कमरे में रहकर, वन रूम लॉकडाउन, कहीं बाहर निकली 40 दिन तक एक ही कमरे में कंटिन्यूअस तपस्या की, कब की और बाबा ने परमिशन दी इसके लिए, कब, जब मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे धर्मराज की सजा नहीं खानी, और बाबा रोज कमरे में आते थे दादी को शक्तिशाली दृष्टि देने के लिए, और बाबा ने यह भी कहा था कि नहीं बच्ची बाबा धर्मराज तुमको आंख नहीं दिखाएगा। तो ये सब क्या है, सेल्फ भट्टी करते रहना है बीच बीच, क्या करना है अपनी भट्टी, यहाँ मधुबन में आए प्रोग्राम बनेगा, यहाँ सब आएंगे क्लास होगी फिर प्रोग्राम देंगे तब भट्टी करना, ये एक प्रकार की भट्टी है, और दूसरी क्या है, व्यक्तिगत पर्सनल, कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं से, खुद ही डिसाइड करना आज मेरी 24 आवर्स की भट्टी है, आज मेरी 24 घंटे की भट्टी है, कुछ भी कर सकते, केले खाने की भट्टी है, केले के अतिरिक्त कुछ मत खाना, मोनो डाइट, एक दिन केवल केला, एक दिन केवल मैंगो, मैंगो भट्टी, एक दिन केवल नारियल पानी, देखो क्या होता है, ये दृढ़ तपस्या संडे की मुरली, तपस्या अर्थात संकल्प, तपस्या अर्थात व्रत, तपस्या अर्थात प्रतिज्ञा, तपस्या अर्थात दृढ़ता, तपस्या अर्थात व्यर्थ से मुक्त, तपस्या अर्थात कल्याणकारी, ये सारे परिभाषाएं तपस्या की है, कुछ भी तपस्या हो सकती है, एक संकल्प एक ही सोमान ले लिया और सारे दिन भर उसका अभ्यास। तो दादी ने 40 दिन तक तपस्या की, जीसस क्राइस्ट के जीवन में दिखाते हैं 40 days तपस्या, जीवन कार्य चालू करने से पहले 40 दिन 40 डेज 40 नाइट का उपवास था, कितने टेम्पटेशन आए उसमें, सबको पार किया फिर जीवन का कार्य चालू किया। नेक्स्ट, दादी लिखती है कि बाबा ने एक बार मुझे कहा कि मधुबन आ जाओ पर मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं पूना में थी 1968 जून, बाबा ने बुलाया तो सबने कहा नहीं जाओ, परंतु मुझे ऐसा था कि बाबा ने बुलाया मुझे जाना था, तो वाया मुंबई जाना था, पहले मुंबई आई, स्टेशन पर अनिला बहन रमेश भाई जी की बहन मिले, उन्होंने देखा कि दादी की तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने भी कहा कि आप नहीं जाओ रुक जाओ, पर दादी को था कि मुझे बाबा ने बुलाया है तो मुझे जाना ही है, और मधुबन में आई दादी मधुबन में थी, यहां पर भी बीमार बीमार। इस बार पहली बार 15 दिन तक दादी मधुबन में थी और दादी ने बाबा को एक शब्द एक दिन पूछा कि मैं बिस्तर पर सोई रहती हूं, मेरा भाग्य कैसे बनेगा। मैं बिस्तर पर सोई रहती हूं, बाबा मेरा भाग्य कैसे बनेगा। बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारा भाग्य बाप के हाथ में है, भाग्य विधाता तुम्हारा भाग्य बना रहा है, इसलिए तुम चिंता मत करो। समर्पण। और कई बार ऐसा होगा कि वेट करना पड़ेगा, वेटिंग पीरियड बहुत लंबा। दे ऑल्सो विन हु ओनली वेट एंड वॉच, पर वो भी जीतते हैं जो केवल इंतजार करते। कई बार ऐसा होगा कि इंतजार करना पड़ेगा, लंबा इंतजार, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, कुछ हो ही नहीं रहा है, शांत इंतजार करो, ऊपर से टचिंग आएगी एक दिन अचानक। क्या करूं क्या करूं, ये कुछ करने से ही तो गड़बड़ हुई है, कुछ मत करो, अभी रुको, बस इंतजार करो। बाबा कब तक कब तक कब तक, कब ये परिस्थिति बदलेगी। कई बार परिस्थिति बदलने को समय लगता है। कंस के अत्याचार चालू है, देवताएं कहां पहुंचे, विष्णु के पास, त्राहिमाम त्राहिमाम कुछ करो। विष्णु ने कहा, मैं आता हूं। कृष्ण ने जन्म लिया, कंस के अत्याचार चालू है। कृष्ण छोटा बालक है, अभी तो जन्म लिया, कंस के अत्याचार चालू है। बड़ा हो रहा है, कंस के अत्याचार चालू है। बड़ा हो गया, कंस के अत्याचार चालू है। तब तक चालू है, उधर भी दिखाया, भक्ति में इंस्टेंट कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है। रावण के अत्याचार चालू है, वो क्या कहता है, विष्णु जी मैं आता हूं। आया और तुरंत आके थोड़ी ना किया कुछ, आया शांति से हो रहा है सब कुछ। फिर विश्वामित्र के साथ थोड़े राम जी घूमने गए, पूरी शादी वगैरह हो गई, फिर वनवास भी हुआ, और वनवास में जाते ही सीधा रावण को नहीं मार दिया। 13 साल तो इधर उधर घूमते रहे, खुशहाली में जीवन, खुशहाली मतलब तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश है राम का, क्या खा रहा है वनवास में। और रावण से युद्ध करने के लिए 13 वर्ष तैयारी थी। कौन सी तैयारी, नीचे सोने की, कंदमूल फल खाने की, राज्य के सारे सुख त्याग दिए। वो उस तपस्या से राम इतना शक्तिशाली बना। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तुम वनवाह में हो, तो उसके बाद मारा रावण को, तब तक क्या, पेशेंस इंतजार, अभी की अभी कर दो बाबा। ऐसे नहीं होता है, भक्ति में भी नहीं होता, इधर भी नहीं होता है। जो कुछ होता है वो कैसे होता है, धीरे धीरे धीरे, ड्रामा की टिक 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 होती रहती है। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा भाग्य बाप के हाथ में। नेक्स्ट, कितने हो गए आज के, 18, 17। कल कुछ और बातें देखेंगे, आज एक दो बातें और। जस्ट हिस्ट्री वाइज, 2004 में ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एल इस्टिकाल, ये अवार्ड दादी को मिला बाय HM हिज हाइनेस किंग अब्दुल्ला दो ऑफ जॉर्डन फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। 2015 स्वच्छ भारत अभियान, श्री नरेंद्र मोदी जी ने दादी को क्या बनाया, ग्रैंड एम्बेसडर। 2015 इतिहास। उसके बाद में विशाखापट्टनम में जिटाम यूनिवर्सिटी है, 2017 उसमें दादी को क्या दिया गया, डॉक्टरेट की डिग्री। उसके बाद में 2019 लास्ट ईयर दादी का रिकॉर्ड किया गया कि दादी ने कितना ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया, 72,000 किलोमीटर्स इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। सेवाओं के लिए कितना ट्रेवल किया, ऐसा किसी ने ट्रेवल नहीं किया होगा आज तक। सभी धर्म स्थापकों में सबसे ज्यादा ट्रेवल किसने किया, गुरु नानक देव जी, सबसे ज्यादा ट्रेवल। इतना ट्रैवल गुरु नानक देव जी जितना ट्रैवल और किसी ने नहीं किया, कहां मक्का, कहां तो भारत के बाहर, दूर दूर तक, और वो भी पैदल। तो हाईएस्ट गुरु नानक देव। और अभी यज्ञ इतिहास में कहो और वर्तमान समय, सेवाओं के लिए सबसे ज्यादा ट्रैवल किसने किया, दान की जाति, कितना, 72,000 किलोमीटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इतना ट्रेवल किसी ने। दादी की 3 किताबें हैं, कंपेनियन ऑफ गॉड, पर्ल ऑफ विजडम, विंग्स ऑफ सोल, इंग्लिश। उसके बाद में सेंटर्स 130 सेंटर्स देशों से भी ज्यादा देशों में और 8500 सेंटर्स से भी ज्यादा सेंटर्स। तो ये सब, और जो कल हम कह रहे थे जानकी फाउंडेशन, वो दिसंबर 97 में लॉन्च एट रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इन लंदन, पेट्रन लॉर्ड नोरी, फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर रे भट्ट। तो ये सब घटनाएं दादी जानकी के जीवन की है। तो कितनी घटनाएं हम देखने वाले हैं ऐसी, 104। आदतें कहो, घटना कहो, किससे कहो, अब तक कितने हो गए, 65 के आसपास। कल हम प्रवेश करेंगे विदेश, थोड़ा पीछे जाएंगे क्योंकि दादी जानकी की जो एंट्री है 74 में, उसके पहले वहां का माहौल क्या है, क्योंकि वहां दादी से पहले भारत के बहुत सारे लोग जा चुके हैं, इंडियन मिस्टिक्स, और जिन्होंने बहुत कुछ बलिदान किया, और फिर दादी जानकी की एंट्री। तो कल हम थोड़ा वो देखेंगे और फिर इतिहास में आएंगे। तो दादी उन आत्माओं में आती है जिन्होंने भगवान को बहुत गहराई से, नजदीक से जाना है। जो तुझको जितना जानता है वो तुझसा ही बन जाता है, जो तुझको प्रभु पहचानता है वो तेरे ही गुण गाता है। ओम शांति।
रचना है तुम रचता हो हम जग में तू जग से बाहर हम रचना है तुम रचता हो हम जग में तू जग से बाहर सब प्रभु तू